नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान। केंद्र सरकार ने कहा, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद देश के किसी भी हिस्से में एलपीजी की कमी नहीं है। पटना की एनआईए अदालत ने जबलपुर स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से AK-47 राइफल की चोरी के मामले में 5 दोषियों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई। और बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली, परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए अंतरित किए। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि भेजी गई है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत माध्यम बन चुकी है।
19 लाख किसान हैं जिनको अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके। आज सम्मान निधि की ये योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बन गए।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे एक ओर जहां मिट्टी की उर्वरता बचेगी और रसायनों पर निर्भरता कम होगी, वहीं दूसरी ओर वैश्विक संकटों से भी खेती को सुरक्षित रखा जा सकेगा।
अब बीजेपी एनडीए सरकार देश के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। किसान जब बहुत बड़े स्तर पर प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी और हमारे अन्नदाता वैश्विक संकटों से भी सुरक्षित रहेंगे।
वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में तेल उत्पादन क्षमता का अभूतपूर्व विस्तार किया है, जिससे आज भारत विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है।
वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है यह दुनिया देख रही है। साथियों, बीजेपी एनडीए की सरकार ने हमारी रिफाइनरीज के विकास के लिए, रिफाइनिंग कैपेसिटी के विस्तार के लिए काम किया है। आज भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी ही नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है।
केंद्र सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण देश में एलपीजी का आयात प्रभावित हुआ है, बावजूद इसके देश के किसी भी हिस्से में एलपीजी की कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 25,000 एलपीजी वितरकों में से किसी के भी यहाँ स्टॉक खत्म होने की कोई सूचना नहीं मिली है।
एलपीजी के संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि ये एक इश्यू ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, खासकर जब हमारा मुख्यतः जितना भी आयात हो रहा है उसमें एक मेजर पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वहां पर क्लोजर की वजह से थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन इसके बावजूद भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें।
श्रीमती शर्मा ने कहा कि देश की रिफाइनरियों के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है और वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की और इसके अलावा सप्लाईज आर ऑल्सो मेंटेन्ड।
संयुक्त सचिव ने कहा कि राज्यों को 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित की गई है। राज्यों से केरोसिन वितरण के लिए जगह चिन्हित करने को कहा गया है।
जो रेगुलर एलोकेशन से अलग से ऊपर 48,000 केएल का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में एक या दो जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके।
राज्य सरकार ने एलपीजी वितरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत गठित नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर है 0612-22-33-050। इस टेलीफोन नंबर पर उपभोक्ता सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक एलपीजी की उपलब्धता, वितरण या इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या तथा शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस बीच राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार 7 निश्चय 3 के तहत लोगों के जीवन को आसान करने के लिए काम कर रही है। श्री कुमार आज समृद्धि यात्रा के दौरान सहरसा और खगड़िया में जनसंवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 1 और 2 के तहत राज्य में विकास के कई काम किए गए।
2015 में 7 निश्चय के तहत जो काम हुआ, सब जगह बहुत काम किया गया। 7 मामले में हर जगह काम हुआ। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का और अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहरसा हवाई अड्डे से जल्द ही हवाई सेवा की शुरुआत होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगले 1 महीने के अंदर सहरसा के भी एयरपोर्ट टेंडर में आ जाएगा और आप यहां से सेवा शुरू कर पाएंगे। इसलिए आपके सब सपने को साकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया कि सहरसा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 512 करोड़ रुपए की लागत वाली 125 और खगड़िया में 304 करोड़ रुपए लागत वाली 319 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने दोनों जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना पर जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने महिला विद्यार्थियों और कर्मियों के लिए मासिक धर्म अवकाश संबंधी राष्ट्रव्यापी नीति की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह से कोई भी महिलाओं को नौकरी नहीं देगा, साथ ही इस तरह के प्रावधान जानबूझकर महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव से जुड़ी पहले की धारणाओं को और मजबूत करेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची ने कहा कि सक्षम प्राधिकरण इस पर विचार कर सकता है। पटना स्थित NIA की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से AK-47 राइफल की चोरी और तस्करी के मामले में फैसला सुना दिया है। न्यायाधीश मधुकर सिंह ने इस मामले में 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 9 अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है उनमें पूर्व सैनिक सुरेश ठाकुर, पुरुषोत्तम लाल रजक, नियाजुल रहमान, मोहम्मद इमरान आलम और शमशेर आलम शामिल हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में जबलपुर स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से 47 AK-47 राइफल की चोरी हुई थी। इन हथियारों को मुंगेर में अपराधियों और नक्सलियों के हाथों बेचा गया था। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए मिली धमकी का संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इधर धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने विधानमंडल परिसर की चप्पे चप्पे की तलाशी ली। कहीं से किसी प्रकार का कोई विस्फोटक नहीं मिला है। विधानमंडल परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन कल शपथ लेंगे। लोक भवन में आयोजित समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इधर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने आज नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पश्चिम चंपारण के जिला गव्य विकास कार्यालय के क्षेत्र अधिकारी अनुराग अभिषेक को 30,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी एक योजना की अनुदान की राशि जारी करने के एवज में शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के टेलवा गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी अजीत यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से एक AK-47 राइफल, दो अन्य राइफल, भारी मात्रा में कारतूस, मैगजीन और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि अजीत यादव का नक्सलियों से संबंध है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। इधर शिवहर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे अंतर जिला अपराधी गिरोह के 4 सदस्यों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया में सबसे अधिक 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज भी राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है।
इधर आज 36.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। नालंदा के राजगीर में आज से 3 दिवसीय नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इस महोत्सव का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति और वैश्विक विचार विमर्श को एक मंच पर लाना है। महोत्सव में कई जाने माने साहित्यकार, लेखक और पत्रकार शामिल हो रहे हैं। नवरात्रि मेले को देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बलसाड़, मुजफ्फरपुर और रक्सौल लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस समेत 5 जोड़ी ट्रेनों का महर स्टेशन पर 5 मिनट का अस्थायी ठहराव निर्धारित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान। केंद्र सरकार ने कहा, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद देश के किसी भी हिस्से में एलपीजी की कमी नहीं है। पटना की एनआईए अदालत ने जबलपुर स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से AK-47 राइफल की चोरी के मामले में 5 दोषियों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई। और बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली, परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।